ओम शांति। क्लास चल रहा था 25-5-65 का, 3 का मध्य आदि। बात चल रही थी ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, विश्व का चित्र दिखाया है और शिव को गुम कर दिया है। ऐसा क्यों किया शास्त्रकारों ने?
संपूर्ण बन जाता है तो छोटी जगह।
हाँ, संपूर्णता को सारी दुनिया मानती है और शिव के अपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है तो शिव को गुम क्यों कर दिया है? शिव का वास्तविक प्रैक्टिकल रूप से शंकर है और शंकर को तो दुख पीता हुआ दिखाते हैं, तो शंकर को माना शिव को, शिव शंकर मिला के एक कर दिया ना, तो शिव शंकर को गुम कर दिया है और जो संपन्न रूप सामने आया उसको शास्त्रकारों ने दिखा दिया है, कितनी गोलमाल कर दी है। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तो यहाँ बता देंगे ना, यहाँ माना कहाँ? संगम युग में जब परमात्मा बाप शिव आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। कौन से वेद शास्त्रों का सार बताते हैं? बेसिक नॉलेज में है तो 2500 वर्ष जो भक्ति मार्ग के शास्त्र चले उनका सार बताते हैं, और जब बेसिक नॉलेज की आवृत्ति पूरी होती है, बेसिक नॉलेज में चलने वाली आत्माएं भी ब्रह्मा की रात में आ जाती है, मन भक्ति मार्ग में आ जाती है, तो भक्ति मार्ग में आने के कारण वो जो भी मुरलियां पढ़ती है सुनती है वो शास्त्र जैसे हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मुख से गाए हुए नहीं है, इनडायरेक्ट हुए, तो इन मुरलियों रूपी शास्त्रों को जिनके लिए बताया कि उनमें मुख्य शास्त्र कौन सा है? गीता। वो गीता ही जीत ही हो गई। क्यों जीत ही हो गई? क्योंकि इसमें साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डाल दिया, दादा लेखराज का। कब से डाल दिया? 65 से ही डाल दिया। मम्मा कंट्रोलर जैसे ही हटी, इलाज कराने के लिए मम्मा गई हुई थी बंबई में, तो कंट्रोल हटा और देवधारी गुरुओं ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। पिता श्री ब्रह्मा का नाम मुरलियों ने डाल दिया। ये अभी भी पढ़ा हुआ है 1967 की वाणी है पिता श्री। शुरुआत में श्री शब्द बाद में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो पिता जो ब्राह्मणों का पिता कहा जाता था वो उस समय शिष्य नहीं था, बाद में शिष्य बन जाएगा, तो पिता श्री ब्रह्मा को कहा जाता है। शिव तो सदैव शिष्य है ही है, तो पिता श्री ब्रह्मा दादा लेखराज का नाम मुरलियों में डालने से जो भी पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? ये वाणी किसने चलाई? शिव ने चलाई या पिता श्री ब्रह्मा ने चलाई? बुद्धि में छाप क्या बैठेगी? पिता श्री ब्रह्मा की वाणी समझ गए थे। तो निराकार जो संपूर्ण है सदैव ही संपूर्ण है वो बुद्धि में से हट गया और साकार कृष्ण रचना का नाम बुद्धि में बैठ गया। तो सारे शास्त्र शिरोमणि गीता भी झूठी हो गई। जब मुख्य शास्त्री झूठा हो गया तो बाकी सब शास्त्र स्वयं ही झूठे हो जाते हैं। इसलिए बताया कि ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का तो सार यहाँ बतावेंगे मना ब्रह्मा के द्वारा भी जो शास्त्र बोले गए उन तो शास्त्रों का सार इस समय नहीं निकला। इसलिए मुरली ने कहा कि अभी नहीं कहेंगे गीता ज्ञान अमृत। अमृत कब निकलता है? जब मंथन किया जाता है तो अमृत निकलता है। और 68 तक जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे उनके मुख से देवी वाणी उच्चारण हुई उसका मंथन नहीं हुआ। तो मंथन न होने के कारण उसे अमृत ज्ञानामृत गीता ज्ञानामृत नहीं कहा जा सकता। इसलिए बोला कि ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तो यहाँ बता देंगे। यहाँ मैंने कहा इस संगम युग में ही आने वाला जो भविष्य है इसमें ब्रह्मा द्वारा जो भी मुरलियां उच्चारण की गई है जिनमें पिताश्री का नाम डाल दिया गया है उन बेहद के शास्त्रों का जो ब्राह्मणों के बेहद के हमारे शास्त्र हैं उनका अर्थ बतावेंगे। सूक्ष्म वचन में तो नहीं समझावेंगे। वो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए अब सूक्ष्म वचन से गुलजार दादी के तन में आकर के वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सूक्ष्म वचन में तो नहीं समझाएंगे। सूक्ष्म वचन में नई दुनिया रचनी है क्या? दुनिया कहाँ रचनी है? साकार वचन में रचनी है। मनुष्य तो यहाँ होते हैं ना। सूक्ष्म वचन में मनुष्य तो नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? साकार वचन में मनुष्य नाम क्यों पड़ा? जो मन का उपयोग करे तो मनुष्य, मनुष्य की औलाद मनुष्य। तो मनुष्य जो है असली अर्थ में अभी संगम युग में होते हैं। मन माना ब्रह्मा, बुद्धि माना तीसरा नेत्र कौन? शंकर। और संस्कार शक्ति ऋषि। तो तीनों शक्तियां मिलकर त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो बताया मनुष्य यहां होते हुए मनु की औलाद, मनु माना ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा, वो मनन चिंतन करने वाला होता है। जो स्वयं मनन चिंतन करने वाला होगा उसकी औलाद भी कैसी होगी? मनन चिंतन मंथन करने वाली होगी। तो बोला मनुष्य यहाँ होते हैं तो मनु भी यहाँ होता है और मनु की जो शक्ति शक्ति औलाद मनुष्य है वो मनन चिंतन मंथन करके यहाँ वेद शास्त्रों का सार निकालते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार अभी समझा रहे हैं और नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। जैसे जैसे सार बुद्धि में बैठता जाएगा नई दुनिया की प्लानिंग बुद्धि में समा जाएगी और वैसे वैसे दुनिया का खाका बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा। नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप आएगा तो कुछ तो सौगात लाएगा। ज्यादा जैसे बच्चा घर में आता है तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या खुशी परिवार में दौड़ जाती है। कौन सी खुशी की लहर दौड़ जाती है? मान लो कोई राजा के बहुत लंबे समय से बच्चा पैदा ना हुआ हो और बहुत लंबे समय के बाद बच्चा पैदा हो जाए तो क्या खुशी की लहर दौड़ती है। تو وارثدار پیدا ہونے سے ہی وارثدار آ گیا. تو ایسے ہی باپ آتے ہیں یا باپ آوے گا, کیا بولا مرلی میں, باپ آوے گا مانے بھوشیہ میں باپ آنے والا ہے, اس کا انڈیکیشن دے دیا. باپ آوے گا کچھ تو سوگات لاوے گا نا, یعنی آنے ماتر سے ہی جو بھی برہما کی اولاد ہوں گے, آدھی برہما کی اولاد, سمپورن برہما کی اولاد, منی کی اولاد, جو بھی اصلی ارتھوں میں منشیہ ہوں گے, جن منشیوں کے لیے شاستروں میں گائن ہے, منشیہ جنم درلبھ ہے. کیا کہتے ہیں, 84 لاکھ یونیوں کا چکر لگانے کے بعد منشیہ جنم ملتا ہے. تو اصلی منشی اولاد منشیہ جنم یہ ہوا جب پرماتما باپ باپ کے روپ میں سستی پر پرتیک ہوتا ہے. تو باپ آئے گا تو کچھ تو سوگات لاوے گا, کیا سوگات لاوے گا, باپ آئے گا تو جو بھی بچے ہیں منشی اولاد منشی, وہ منن چنتن منتھن کر کے اپنی بدھی میں یہ بات فکس کر لیں گے, درمشے پوروک یہ بات بدھی میں بیٹھ جائے گی کہ اب نئی دنیا آنے والی ہے, یہ نئی دنیا کا ورثہ ہم کو ملنے والا ہے, مرنے کے بعد نہیں, جیتے جی انہیں آنکھوں سے ہم نئی دنیا دیکھیں گے. تو باپ آوے گا تو کچھ تو سوگات لاوے گا, تو کیا سوگات لاتے ہیں, ٹی وی پر بہت چلاتا ہے, انہوں نے تو صرف چتر دکھائی دیا, کیا کشن کا چتر بنایا اور اس کی ہتھیلی پر ہاں سر کا چتر رکھ دیا. اب ارتھ بھی تو سمجھنا پڑے, تو واسطو میں اس کا ارتھ یہ ہے کہ ہماری بدھی روپی ہتھیلی میں جیسے ہی ہم منشی اولاد منشیہ بنتے ہیں, ہماری بدھی روپی ہتھیلی میں وہ نئی دنیا روپی سورگ کا سارا کھاتا بدھی میں اتر جاتا ہے. تم جانتے ہو ہمارے لیے دادا نے تین پر بہت چلائی ہے, کیا وہ تو کشن کو دکھاتے ہیں, کشن کی بات نہیں ہے. اگر ہے بھی کشن کی بات تو سچمچ کی کشن کی بات ہے یا سنگمی جی کی کسی کی بات ہے, سنگمی جی کسی کی بات ہے, یہاں سنگمی جی کہتے ہیں کہ بدھ روپی ہتھیلی میں وہ سرک کا سارا کھاتا بدھی میں پہلے چھپ جاتا ہے. تو تیری پر بس چلایا ہے, تم جانتے بھی ہو, تم بچے بھی, بچے بھی ہو, کیا تمہاری بدھی میں ورثا بیٹھ گیا, تم بچے بھی ہو اور سگنیا بھی ہو, کیا تم سگنیا بھی ہو, سگنیوں کا کیا آپ ہوتا ہے, جیسے ہی سگنی ساگن کی سگنیا بنتی ہے اس کے آگے اس کے پر اس کا حق ہو جاتا ہے. تو سنگم جی سکے کا بدھی میں اگر یہ پوری طرح بہت دکھائی گئی ہے, وہ ورثہ اس کی بدھی میں بیٹھ جاتا ہے, تو جو بھی سگنی ہے واسطو میں انہوں نے تو کشن کا نام ڈال دیا, کشن ہے یا واسطو میں شبھ ہے, شبھ ہے تو شبھ کی تم سگنیا ہو تو آدھا حصہ تمہارا آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تمہارے لیے میں نے کتنی اچھی سوگات لائی ہے, کون سی سوگات لائی ہے, بدھی میں پوری طرح بہت چلائی ہے, ایسی سوگات کوئی تم کو دے نہیں سکتا کہ تمہاری بدھی میں یہ نشچیاتم روپ سے وشواس بیٹھ جائے, درتا سے یہ نشچے بیٹھ جائے کہ اب نئی دنیا کا ورثہ ہم کو ملنے والا ہے. जीवन मुक्ति धाम जाते हैं, जाया मुक्ति धाम सीधे सीधे नहीं जाते, पहले मुक्ति धाम दुखों से दर्दों से जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से क्या हो जाती है, मुक्ति, आत्मा मुक्त अपने को अनुभव करने लगे। शरीर छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद नहीं, इसी शरीर में रहते रहते हमारी बुद्धि ऐसी बन जाए कि हम सुख ग्रहण करें लेकिन दुख ग्रहण न करें, अनुभव ही न करें, न दुख देना है न दुख लेना है, दूसरों को सुखी करना है और सुख की ही बातें नहीं मिली, सुख के वाइब्रेशन छोड़ने हैं और सुख के वाइब्रेशन दे दूसरों को ग्रहण करने, ऐसी स्थिति हमारी बन जाए। तो बोला कि तुम्हें डायरेक्ट जीवन मुक्ति धाम नहीं जाते हो, पहले जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे या पहले मुक्ति का अनुभव करेंगे, पहले दुख दर्दों से अशांति से मुक्ति का अनुभव आत्मा करने लगे। मान लो कोई चिल्लाता है, बुल्लाता है, रोता है, दिखता है, परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है, लाल लाला से अपनी भी करता है, आजू बाजू वालों की भी लाल लाला से करता है, तो ऐसा मनु की औलाद मनुष्य है, उसको मुक्ति का वर्षा क्या कहेंगे, नहीं मिला। किसको मिला? ऐसे वाइब्रेशन के बीच, ऐसी वाचा की लड़ाई के बीच, ऐसी वाचा की लड़ाई के बीच, ऐसी खून खार लड़ाई के बीच, जिनको क्रोध का नाम निशान भी ना आए, अटल स्थिति बनी रहे, अटल स्थिति बनी रहे, उनको कहेंगे कि उनको मुक्ति का वर्षा मिल गया। ये मुक्ति का अनुभव आत्मा पहले अनुभव करे, ये शर्त है कि पहले मुक्ति का वर्षा मिले उसके बाद जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। ये बातें नए कोई की बुद्धि में नहीं बैठेंगी। क्या क्या ये इस दुनिया में बैठे बैठाए स्वर्ग में जा रहे हैं, परम नाम ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, हमारी इस समझ में नहीं आता कुछ। तो नए कोई की बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकती। अच्छी रीत पॉइंट धारण कर फिर भाषण करना। क्या भाषण भी कौन करे? जिसकी बुद्धि में अच्छी रीत ये बात धारण हो जाए कि शरीर के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते हम मुक्ति धाम का अनुभव करेंगे, जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाए वो दूसरों को ये बात समझाना शुरू करे। बेसिक में होंगे तो सिर्फ बेसिक मात्र से ये बात बुद्धि में नहीं बैठ सकती। एडवांस बुद्धि जिनकी बनी हुई होगी उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है कि जो भी बाप का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का, वो हमको इसी जन्म में मिलना चाहिए। तो जिनकी बुद्धि में बैठ जाए उनको फिर भाषण करना है। ये सेमिनार कितना अच्छा है, कुमारियां भी है, अदर कुमारियां भी है, सबको इकट्ठा एक ही समय पे मना नहीं सकते हैं। कभी सेमिनार के लिए कुमारियों को बुलाया गया है, कभी अदर कुमारियों को बुलाया गया है, कभी कुमारों को बुलाया जाए, कभी अधर कुमारों को बुलाया जाए। तो सेमिनार बहुत अच्छा हो सकता है। इतने सब इकट्ठे अगर बुला लिए जाए तो इकट्ठे यहां रह नहीं सकेंगे। क्या अगर कुमार अगर कुमारियां कुमार और कुमारियां सबको एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सबके वाइब्रेशन हरेक की अपनी अपनी कैटेगरी के वाइब्रेशन होते हैं, कुमारों के वाइब्रेशन अपने प्रकार के होते हैं, उनकी तकलीफ अपने प्रकार की होती है, उनकी समझ अपने प्रकार की होती है, तो उनको अलग मिलाकर के सेमिनार की जाए, कुमारियों को अलग मिलाकर के सेमिनार करे बताया, फिर बाप ही सबको सर्टिफिकेट देंगे। इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये अच्छा समझाते हैं, इनको अभी समझाने का उतना बुद्धि नहीं बैठा है, ये तो समझते जितना मेहनत करेंगे तो अपने पांव पर खड़े रहेंगे, अपनी वोट तो नशा चढ़े, जितनी बुद्धि चलाएंगे अमृत वेले दो बजे से याद में बैठ करके जितना मंथन करेंगे तो अपना पांव पर खड़े होने की ताकत आती जाएगी, बाप मदद करेंगे कि बाबा से सबको वर्षा मिलता है, क्या कहा सबको मनुष्य को जो अपने पांव पर खड़े होने की हिम्मत करेंगे उन सबको बाप से वर्षा मिलता है, मेल फीमेल हरेक वर्षा लेने का हकदार है, ये नहीं ये तो बूढ़ी माता है ये क्या मनन चिंतन मंथन करेंगी, कोई कोई बूढ़ी माताएं भी ऐसी निकल पड़ेंगी कि मंथन करेंगी और अच्छा भाषण करेंगी, क्या अच्छा भाषण करेंगी, तो ऐसे नहीं समझना कि फीमेल है इनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, बाप की नजर में कोई मेल और फीमेल नहीं है, या तो पहले रुद्रमाला प्रत्यक्ष होनी है, रुद्रमाला में कोई फीमेल मरता है शरीर से और भाव स्वभाव संस्कार से, पुरुष का भाव स्वभाव संस्कार उसमें भरा हुआ है, तो कौन सा कहा जाएगा, मेल कहा जाएगा मेल फीमेल कहा जाएगा, मेल ही कहा जाएगा, तो बोला मेल फीमेल हरेक यहां वर्षा लेने का हकदार है, अभी तो गवर्नमेंट में भी ये नियम निकल गया, बाहरी गवर्नमेंट में भी क्या नियम निकला है, पहले वर्षा नहीं मिलता था फीमेल को, अभी अभी मेल फीमेल दोनों को बराबर वर्षा मिलता है, तो ये कहां का प्रभाव हो गया उस गवर्नमेंट में, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का प्रभाव वहां पहुंच गया, पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, असम सेक्टर से शिवरात्रि की भी छुट्टी होने लगी, तो कहां का प्रभाव पहुंच गया, यहां का प्रभाव पहुंच गया, तो सारी दुनिया ईश्वर को ही तो फॉलो करती है, तो मेल फीमेल हरेक को वर्षा लेने का हकदार बनाया हुआ है, 21 जन्मों का वर्षा है क्या, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने का वर्षा कितनी जन्म का है, 21 जन्म का वर्षा है, फिर चाहे राजा रानी बनी और चाहे प्रजा बनी, 21 जन्म ये मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं, प्रजा को भी मिलेगा और राजा को भी मिलेगा और रानियों को भी मिलेगा, अब ये पुरुषार्थ करने वालों के ऊपर है कि वो राजा बनते हैं महाराजा बनते हैं रानी बनते हैं या नंबर वार प्रजा बनते हैं, ये पक्का निश्चय रखना है, हम बाप से वर्षा लेने आए हैं, क्या क्या पक्का निश्चय रखना है, हम कोई इब्राहिम बुद्ध का ऐसे वर्षा लेने नहीं आए हैं, किससे वर्षा लेने आए, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से वर्षा लेने आए, हम सूर्यवंशी बच्चे हैं, इसी जन्म में जीते जागते मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाले हैं। दूसरे धर्म के होंगे तो उनको सभी तोड़ना पड़े। हम तो डायरेक्ट लेने वाले, ये पक्का निश्चय रखना है। हम बाप से वर्षा लेने आए हैं, कोई देवधारी गुरुओं से वर्षा लेने नहीं आए हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार छोड़ना भी नहीं है। वर्षा तो लेने आए हैं लेकिन गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। तो जो कुमार बैठते हैं कहते हैं हम तो शादी कर लेंगे। तो जब ये सोचते हैं तो क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? ये सोचना सही है या गलत है? क्यों गलत है? हाँ, अभी अभी तो बोला तो बाबा के साथ पार्टिसिपेशन करो है, क्या कर लो, आधा आधा बांट लो। दूसरी बात, हम माँ बाप के बच्चे हैं, हमारा नया जन्म है, हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, तो हमारा गृहस्थ व्यवहार है या उस गृहस्थ व्यवहार से हम बाहर हैं? बाहर है या हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं? हमारा प्रजापिता ब्रह्मा दोनों प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, तो माता पिता हमारे मौजूद है, हम उनके बच्चे हैं, तो गृहस्थ व्यवहार के अंदर ही सन्यासी बन के बाहर चले गए गृहस्थ व्यवहार में ना। तो बोला गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। ये जो हमारा देहादे का गृहस्थ व्यवहार है, इस ईश्वरीय गृहस्थ व्यवहार को छोड़ना नहीं है। मान लो कोई कुमार ने शादी कर ली तो उसे छोड़ना कहेंगे या पकड़े रहना चाहिए? छोड़ दिया, इस देहादे के गृहस्थ व्यवहार ईश्वरीय परिवार का तो नियम ही नहीं है। क्या शादी करवाए ढोल वजीरा बजाओ, बच्चे पैदा करो, यहाँ तो देहादे के बच्चों की पैदाइश होती है, बेहद की सजनिया सबको मिली हुई है। सजनिया का नाम क्या है, है? कौन है मासूस क्यों बाबा? तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ना नहीं है। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग, क्या तुम उन्हें कितना भी समझाओ, जिनको छोड़ना होगा वो तो छोड़ के चले जाएंगे। देवी उनका संन्यास मार्ग ड्रामा में नींद है, भारत में सर से सिखाई। क्या भारत है सर्वश्रेष्ठ खंड? क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ गृहस्थ व्यवहार में आते हैं, गृहस्थ व्यवहार में आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। उनको गृहस्थ व्यवहार में आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। कुमार के तन में आती है कि अगर कुमार के तन में आते हैं? कुमार के तन में आते हैं,
दोनों पार बजा सकते हैं।
नहीं, मैं पति तन में आता हूँ ना, हम क्या मैं पावन तन में आता ही नहीं हूँ। कुमार को पावन कहेंगे या पति कहेंगे? कुमार को पावन होता है तो किस तन में आता हूँ? पतित अनुभवी तन में आता हूँ। क्या कैसा अनुभवी? मान लो दस इंद्रियां हैं और दस इंद्रियों में से नौ इंद्रियों का पूरा अनुभव है, एक इंद्री का अनुभव नहीं है, तो उसको अनुभवी तन कहेंगे? नहीं, मैं अनुभवी तन में आता हूँ। फिर बोला कब आता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। कब आता हूँ? वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, गृहस्थ व्यवहार में आता हूँ और गृहस्थ व्यवहार में आकर के राजयोग सिखाता हूँ। क्या गृहस्थ व्यवहार जहाँ नहीं है वहाँ मैं राजयोग नहीं सिखाता हूँ? ब्रह्मा सरस्वती के गृहस्थ व्यवहार कहेंगे नहीं? وہ تو ان کی بیٹی تھی, وہ 14 سال کی بیٹی تھی اور وہ 7 سال سے اوپر ہو چکے تھے, تو ان کی گرہستی کیسے کہی جائے؟ واسطو میں جو ابھی یہاں اشارہ دیا, کیا باپ آئے گا تو کچھ تو سوگات لا دے گا, آئے گا تو پریکٹیکل وہ ماں باپ بن کر کے آئے گا اور آ کر کے بچوں کو مکتی جیون مکتی کا ورثہ دے گا. تو باپ کہتے ہیں جیسے وار چھوڑنا نہیں ہے, بھارت ہے سروشریش کھنڈ, کیوں سروشریش کھنڈ ہے؟ شری بابا بھگوان بھارت میں آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں گرست ویوہار کی پالنا بھارت وش میں سروشریش ہوتی ہے. دوسرے دیشوں میں تو جانوروں میں سے زندگی ہے, جیسے جانور کا کوئی بھی ٹھکانا نہیں ہوتا, کوئی بھی سمبندھ پکا نہیں ہوتا, ایسی زندگی ہے بھارت ورش میں. یہ مانا جاتا ہے ایک ناری سدا برہمچاری, تو بھارت سرو شریش کھنڈ ہے, ان جیسا شریش تیرتھ کوئی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تیرتھ ہے. تیرتھ مانا تیر, مانا کنارا, کھا مانا استھان, کنارا لگانے والا استھان کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں بھارت کے سوائے. ایک بھارت ہی ایسا استھان ہے جہاں دنیا کی سب آتماؤں کو ٹھکانا دیا جاتا ہے. پرنتو گیتا کو کھنڈن کرنے کے کارن سرو دھرموں کا سرو دیشوں کا تیرتھ نہیں گنا جاتا. کیا گیتا کیا کھنڈن کر دی؟ اس نے ساکار کا نام ڈال دیا. اگر نراکاری سیج والا پرم پتا پرماتما شیو کا جان ہوتا کہ وہ نراکار پرم برہم پرمیشر دیو گیتا کا بھگوان ہے, تو ساری دنیا سب دھرم کے لوگ سبھی دیشوں کے لوگ گیتا کو اپنا دھرم شاستر مانتے, بھگوان کے اپنا سوروپ مانتے کہ یہی ہمارے بھگوان کا اصل سوروپ ہے. تھا مانا استھان, کنارا لگانے والا استھان کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں بھارت کے سوائے. ایک بھارت ہی ایسا استھان ہے جہاں دنیا کی سب آتماؤں کو ٹھکانا دیا جاتا ہے. پرنت گیتا کو کھنڈن کرنے کے کارن سرو دھرموں کا سرو دیشوں کا تیرتھ نہیں گنا جاتا. کیا گیتا کیا کھنڈن کر دی؟ اس نے ساکار کا نام ڈال دیا. اگر نراکاری سیج والا پرم پتا پرماتما شیو کا جان ہوتا کہ وہ نراکار پرم برہم پرمیشر دیو گیتا کا بھگوان ہے, تو ساری دنیا سب دھرم کے لوگ سبھی دیشوں کے لوگ گیتا کو اپنا دھرم شاستر مانتے, بھگوان کے اپنا سوروپ مانتے کہ یہی ہمارے بھگوان کا اصلی سوروپ ہے. لیکن غلطی سے ساکار کا روپ ساکار کا نام گیتا نے ڈال دیا, تو گیتا جھوٹھی ہو گئی. اس کا فاؤنڈیشن کہاں پڑا؟ سنگ مج میں کیسے پڑا فاؤنڈیشن؟ جو گیتا ماتا برہما ہے, اس گیتا ماتا برہما دادا لوک راج کو کیا سمجھ لیا؟ گیتا پتی بھگوان سمجھ لیا, گیتا ماتا کا پتی سمجھ لیا. واسطو میں یہ تو کرشن بچہ ہے, جو کرشن بچے کے روپ میں ورثہ لینے والا ہے وہ آتما رچوتا نہیں ہے, وہ ستگنی بھی رچوتا بن کر کے پیدا ہوگی. کس سے؟ رچوتا باپ سے. تو رچوتا باپ کی جگہ رچنا کا نام ڈال دینے سے ساری گیتا جھوٹ ہو گئی. کا सात धर्म खंड वालों ने, सात धर्म वालों ने गीता को निर्लिप्त कर दिया। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय पूरा देने हो, जो मनुष्य समझ रहे बड़े बड़े भारत का राजयोग ये है क्या, जो असली गीता है, असली गीता पति भगवान है, ये हमारे माई बाप है और इन माई बाप से सारी मनुष्य शक्ति को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। यहाँ गेरू कथनी आदि पहनने का नहीं है। वो क्या करते हैं सन्यासी, घर बार छोड़ते हैं तो गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने का मतलब क्या हुआ है, वे रंग जाते हैं अपने कपड़े को, कैसे रंग में, परम दामी रंग में। हमको अपना वस्त्र परम दाम का जैसा रंगने की दरकार नहीं है, हम तो घर वस्त्र के पक्के हैं, हमको घर वस्त्र यार छोड़ना नहीं है। कोई भी कपड़ा पहनो, क्या कपड़े का हमको कोई बंधन नहीं है कि सफेद कपड़ा ही पहनना। कोई सन्यासी सफेद कपड़े भी पहनते हैं, देखे होंगे, कोई सफेद कपड़े वाले सन्यासी, कोई रंगीन कपड़े वाले सन्यासी, कोई पीले कपड़े वाले भी सन्यासी होते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई बंधन कपड़ों का कोई बंधन नहीं, कोई भी कपड़ा पहनो। देव सहित सब कुछ भूल जाते हैं, क्या कपड़ा कोई भी हो, मन तुम कपड़े की बात है, शरीर ही की वस्त्र है। इस जन्म में कोई को तो आर्य समाधि का मिला हुआ है, कोई को बौद्धि का मिला हुआ है, कोई को सन्यासी का मिला हुआ है। तो कोई भी धर्म का वस्त्र हो शरीर रूपी, लेकिन इसको छोड़ना है या उसको ग्रहण करके रखना है, इसको तो छोड़ना ही है। मन वो देहधान छोड़ना है कि मैं इस धर्म का हूं, क्या वो शरीर का धर्म हो गया। हम तो वास्तव में, हम तो वास्तव में आज सनातन देवी देवता धर्म की सबकी आत्मा है, आत्मा है जो पहले जन्म में जन्म लेने वाले वर्षा लेने वाले हैं। तो हम देह से सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे जीते जी मर जाते हैं। बाप कहते हैं जीते जी मरकर फिर जिए, क्या ये शरीर भले रहे लेकिन शरीर के देहदान से जीते जी मर जाए, मरो और फिर जिए। माने देह और देह के संबंधों से मर जाओ और मरने के बाद फिर ब्राह्मण परिवार में जिए। तुम आसुरी संप्रदाय से निकल अभी सूर्य संप्रदाय के बने हो, क्या जिनका नया जन्म हो गया वो आसुरी संप्रदाय की बात मानेंगे नहीं मानेंगे। प्रहलाद ने क्या किया, हरणाकश्यप की बात मानी, कोई कहे अरे तुम्हारा बाप है उसकी बात क्यों नहीं मानते, अरे हमें भगवान बाप मिला है, हमें देव का बाप मिला है तो हम उसकी बात मानी या उसकी बात माने। इसलिए एक मुर्मू बोला दिए, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। नोट करो, क्या मुर्मू ने बोला लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। तो तुम आसुर संप्रदाय से निकल अब ईश्वर के बने हो, किसके बने हो, ईश्वर के बने हो। इसको कहा जाता है जीते जी मर करके बाप से बेहद कवर कर लेना, हीरे जैसा जन्म इसको कहा जाता है। किसको, कि पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंधियों से जैसे बिल्कुल मर गए, बुद्धि में उनकी बिल्कुल याद भी, कोई नया जन्म ले लेता है तो पूर्व जन्म की बातें बुद्धि में याद आती है क्या, तो समझ लो जिनकी बुद्धि में याद आ रही है उनका मर्जी का जन्म है अथवा नहीं है। कहेंगे अभी मर्जी का नहीं बने, बड़ी बड़ी याद आती रहती है। तो बोला है ये है जीते जी मरना, प्रतिदिनों पे बात ये होती नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपके हैं, क्या हम लौकिक माता पिता या लौकिक संबंधियों के नहीं है, आपकी ही सीमत पर चलेंगे, आपसे हम पूरा वर्षा लेंगे, पूरा वर्षा लेंगे तो पूरी मत पर भी चलना पड़े, और पूरी वर्षा नहीं लेंगे तो पूरी मत पर भी नहीं चलेंगे, पूरा वर्षा लेंगे तो पूरी मत पर चलना पड़े, क्या कहा? ये कंडीशन है, इसलिए बोल दिया मुर्मू ने, अपने धर्म का होगा दूसरे धर्म का नहीं होगा, तो सारी बात मुर्मू की मानेगा, पूरी श्रीमत को फॉलो करेगा, और दूसरे धर्म का होगा तो आधी बात मानेगा मुर्मू की, आधी हम ये बात नहीं मानते, आधी बातों के लिए साफ इनकार कर देगा, तो समझ लीजिए दूसरे धर्म का है कोई, तो मैं सूर्य वर्ण से एकदम जीते जी मरकर एकदम ब्राह्मण बनते हो, हमारी पहचान क्या बताई? जो हमारे कुल का होगा वो थोड़ा भी सुनेगा तो तुरंत तुरंत ही उसकी बुद्धि में बैठ जाएगा और लंबा काम नहीं लगाएगा, तो एकदम हुआ ये धीरे धीरे हुआ एकदम झटको, तुम सूर्यवन से एकदम जीते जी मर करके एकदम ब्राह्मण बनते हो, पुराने बंधन से बिल्कुल मरना है अर्थात उनको भूलना है, इसका मतलब जिस समय ये 65 वाणी चलाई जा रही है उस समय कोई मरा हुआ नहीं था, उस समय की बात नहीं है, अगर होती तो ऐसे नहीं बोलते कि पुराने बंधन से बिल्कुल मरना है, मैंने मरे नहीं हूं मरना है भविष्य में, अर्थात पुराने बंधनों को पुराने संबंधों को भूलना है, फिर देवताओं के संबंध में आना है, क्या पहले एक कंडीशन है, वो नहीं सीधे सीधे देवता बन जाएंगे, देवताओं से संबंध जुड़ जाएगा, देवताओं के बच्चे बन जाएंगे, क्या होगा पहले? पहले पुराने संबंधों से पूरा मरना है भूलना है, फिर देवताओं के संबंध में जाना है, क्या देवताओं के संबंध में जाना है, ब्रह्मा को देवता कहेंगे? वहां तो कहते हैं भक्ति मार्ग ब्रह्मा देवता ही नमा, लेकिन फिर ये कहते हैं पूजा ऊजा नहीं करते, मैंने कहने के कहने मात्र हो गया, अच्छा शंकर के जो रूप है जिसमें शिव प्रवेश करता है संसार में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, इसको देवता कहेंगे? इसको ब्राह्मण कहेंगे? नहीं, बाबा मुर्मू बोलते हैं न मैं ब्राह्मण बनता हूं न मैं देवता बनता हूं, क्या न मैं ब्राह्मण हूं और न मैं, क्योंकि ब्राह्मण बनेगा तो पतिदेव को पावन कैसे बनाएगा और देवता बन जाएगा तो ही प्रवेश नहीं हो सकता, तो मैं देवता हूं और मैं ब्राह्मण हूं, तो पुराने संबंधों को भूलना है फिर देवताओं के संबंध में जाना है, माना दूसरी एक देवता रह गया, तो अभी कौन सी स्थिति चल रही है? यही भी स्थिति चल रही है, अभी दूसरी देवता प्रत्यक्ष हो गया जो उसके संबंध में आएंगे उसके परिवार के संबंध में, फिर देवताओं के संबंध में जाना है, यहां ब्राह्मण बनेंगे तब वहां जाए देवी देवता बनेंगे, विष्णु के संबंध में जाएंगे, ये भाई बहन का संबंध है नंबर वन, यहां कौन सा नंबर वन संबंध है? भाई बहन का संबंध है नंबर वन, 25-5-63 की वाणी का चौथा पेज, विकार की दृष्टि जा नहीं सके, क्या अगर भाई बहन का संबंध पक्का बन गया तो भाई की विकार की वृत्ति बहन के साथ या बहन की विकार की वृत्ति किसी भाई के साथ जा नहीं सकती। अगर जाती है तो वो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं है, वो शूद्र है शूद्राणी है, इनको वर्षा नहीं मिल सकता। बाप देखेंगे बच्चा बने प्रतिज्ञा करे फिर विकार में गिरे तो धर्मराज दंडे भी बहुत मारेंगे। क्या कहा? ऐसे नहीं दंडे मारेंगे, बाप देखेंगे। क्या? बाप देखेंगे माने बाप धर्मराज का पार्ट होगा। क्या बात देखने का? ये भाई बहन कहता तो है दुनिया को लेकिन वास्तव में शूद्र है। तो शूद्र में भी ऐसे होते हैं जो भाई बहन का संबंध मिल जाते हैं। शूद्र जानवरों में काम कर रहा, जानवर भी भाई बहन नहीं देखते, बाप बेटी का संबंध नहीं देखते। तो बोला बाप देखेंगे बच्चा बने प्रतिज्ञा करे फिर विकार में गिरे तो धर्मराज के दंड बहुत मारेंगे। प्रतिज्ञा कर माने जो भी ब्राह्मण है उनसे प्रतिज्ञा लिखाई जाती है, लिखाने के लिए डायरेक्शन मुरली ने बोला है, लिखित रूप में लिखवा के रख लिया गया। क्या रख लिया गया? है आजीवन पवित्र रहेंगे तो लिख करके दे दिया। कोई साधारण को लिख करके नहीं दिया, किसको लिख करके दिया? सुप्रीम सोल बाप को लिख करके दिया कि हम आजीवन पवित्र रहेंगे। फिर दुनिया की आंखों में दूर झोंकना शुरू कर दी तो पक्के ब्राह्मण वर्षा लेने लायक नहीं कहे जा सकते। पवित्रता की प्रतिज्ञा पूरी रखनी है। बाप से हम विश्व का मालिक बनते हैं। किसका मालिक? सतयुग का मालिक नहीं, सतयुग का मालिक नहीं बनते हम बाप से। कौन सा मालिक बनते हैं? सारे विश्व का, सभी विश्व धर्म वाले मानेंगे हमारी श्रेष्ठता को। एक जन्म विकार में न गए तो क्या बड़ी बात है, या तो 21 जन्म का वर्षा मिल रहा है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी पुरुषार्थ का हिसाब किताब के संस्कार बुद्धि में बैठ जाते हैं। तो एक जन्म विकार में न गए तो क्या बड़ी बात है। कई तो कहते हैं पीछे क्या होगा तो बाद में देखा जाएगा। क्या पहले कहे नड्डू पेड़ा जले भी खा लेने दे। साहूकार लोग तो अभी ही अपने को सर्व में समझते हैं, इसलिए गरीबों के लिए सरेंडर होना सहज है। गरीब निवाज क्यों गाया हुआ है? क्या वहां बाप के दरबार में गरीब ही आकर के सरेंडर होते हैं? साहूकार का भी सरेंडर हो न सके, उससे भी पहचान हो सकती है। उसे भी परिवार की क्या पहचान हो सकती है कि जहां गरीब ही आकर के सरेंडर होते हैं तो वो उनसे भी परिवार, और जहां बड़े बड़े लखापति करोड़पति आके सरेंडर होते हैं, उनके बच्चे आके सरेंडर होते हैं तो वो उनसे भी परिवार नहीं हो सकता। साहूकारों के होते विधि होते हैं इस बात में है सरेंडर होने में। अरे यहां खिचड़ी कौन खाएगा? बात है गरीब निवास, गरीब यहां साहूकार बन जाते हैं। जो यहां के गरीब है वे वहां साहूकार बन जाते हैं। साहूकार बन न करने के कारण साहूकार बन न सके। क्या कहा? वे यहां बलि चढ़ते हैं वे वहां जाकर के साहूकार बन जाते हैं, और राजाई में वो आ नहीं सकते। कौन? साहूकार लोग। कहां वो कौरव गवर्नमेंट और कहां ये पांडव गवर्नमेंट, कौरवों का तो बड़ा भारी दबका होता है और पांडव तो बेचारे गरीब दिखाए जाते हैं, कैसे होते हैं बगर। तो बोला कहां कौरव गवर्नमेंट और कहां ये पांडव गवर्नमेंट, कौरव गवर्नमेंट का यादव गवर्नमेंट का दबका बहुत भारी होता है, वो तो बड़े बड़े साहूकार होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे अहदे वाले होते हैं, यहां तो तुम सब गरीब हो, राज्य तो दोनों को नहीं होता है। अभी क्या, अभी न कौरवों को राज्य है न पांडवों को राज्य है, साहसों में तो झूठ ही बातें लिख दी है कि कौरवों को राजा ही थी और पांडव गली गली से दुखमंगे थे, ऐसा नहीं है, राजा ही अभी किसी को है ही नहीं, दिया खेला फिर हराया, ऐसा कोई स्कूल में जुआ खेलने की बात नहीं है, ये तो ईश्वरीय जुआ है। क्या ईश्वरीय जुआ है, जिन्होंने परमात्मा बाप को पहचाना वो गरीबी तन धन धाम सहद परिवार की बाजी लगाते हैं, पत्नी बीवी बाल बच्चों की ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने की बाजी लगा देते, बाकी यहां कोई जुए की बात नहीं है। समय प्रधान दुनिया है ना, तो काम की बातें ही सोच लेते, अच्छा नीचे नीचे सुकून दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। इसी दिन शाम को रात की क्लास चली है 25-65 की छोटा सा क्लास, यहां तुम सभी बच्चों का हक है बाप से पूरा वर्षा लेने का, क्या यहां हक है, ये क्यों बोला हाँ? यहाँ हक है, यहाँ मानो संग लीग में और किसी जन्म में पूरा वर्षा किसी को बाप से नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तुमको ये हक है कि बाप से तुम पूरा वर्षा ले सकते हो। पूरा वर्षा माने, पूरा वर्षा माना क्या, अधूरा वर्षा माना क्या, नहीं हाँ, इससे जन्म में जीते जी हम मुक्ति जीवन मुक्ति का पूरा वर्षा बाप से ले सकते हैं, पूरा वर्षा मैंने विश्व की बाप का ही भी ले सकते हैं। जानते हो कल पहले भी हम बेहद बेहद में यहां थे, बेहद बाप के हम बल बेहद का वर्षा हमने लिया था, कलप कलप हम ये वर्षा लेते हैं, फिर रावण से जलाते हैं, बाप सन्मुख है तो फिर पुकारने की बात नहीं है, क्या पुकारते हैं ना, हे भगवान इसके जैसे दूर है कहीं, जब सन्मुख है तो पुकारने की बात नहीं है, यहां बच्चों का बाप से कनेक्शन है, बच्चों का बाप से संबंध जुड़ा हुआ है, कोई भी बात में लज्जा नहीं करनी चाहिए, क्या घर में बच्चे होते हैं वो बाप से लज्जा करते हैं क्या, कोई भी बात में लज्जा करते हैं क्या, नहीं बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई भी बात में लज्जा नहीं करनी चाहिए, लौकिक संबंधियों से भी युक्ति से तोड़ निभाने है, तोड़ तो निभानी है लेकिन दुनियावी तरीके से नहीं, कैसे युक्ति से तोड़ निभानी है, कोई सी शादी है कोई सी पार्टी है तो बाबा से राय पूछो इस हालत में हमको क्या करना है, बाबा तुम्हारे भाव स्वभाव संस्कार को देख करके बता देंगे हाँ, बाबा से पूछो इस हालत में हमको क्या करना है, शादी में जाए या नहीं जाए, बाबा जानते हैं कि अब वहां जाएगा तो बिना डूबे बचेगा नहीं, बाबा सब तरह की राय देंगे फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा, बाबा अगर परमिशन दे देते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा, कोई भी बेकायदे काम न हो, क्या था कोई भी काम करो तो बेकायदे काम न करो, कोई कोई ऐसे चालाक बच्चे हैं कि बाबा से परमिशन ले लें, बाबा शादी करे तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई पाप नहीं रहेगा। यहाँ बच्चों का बाप से कनेक्शन है, कोई भी बात में लज्जा नहीं करनी चाहिए। बाबा से राय पूछे इस हालत में क्या करना है, बाबा सब तरह की राय देंगे। फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा रहेगा, कोई भी बेकार में काम नहीं हो, नहीं तो फिर दुश्मन बन करते हैं। ज्यादा छूट करने इंसल्ट हो जाती है। क्या था श्रीमत के बरखिलाफ बाप कोई भी बच्चे को ज्यादा छूट नहीं देते हैं। सबसे तेज रूहानी कुमत पर चलने से फिर धर्मराज के दंडे खा लेंगे। क्या बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, जो दुष्ट मत देते हैं उनकी बात नहीं माननी है, नहीं तो दंडे खा देंगे। ये तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, बाप है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड। तो श्रीमती हमको श्री बनाते हैं और श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनते हैं, आखिरी मत से हम बेस्ट बनते हैं। क्या व्यापार कलयुग से भ्रष्ट भी होंगे दुनिया में और श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी होंगे, लेकिन भ्रष्ट कौन बनाते हैं? जो आखिरी मत पर यहाँ संगम युग में चलते हैं वो भ्रष्ट वहां बन जाते हैं, और जो यहाँ सिर्फ श्रेष्ठ मत पर चलते हैं वो जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनेंगे। तुम बच्चों को बुद्धि योग इस बात से लगाने, क्या कहा इशारा कर दिया, तुमको बुद्धि होगी इस बाप से नहीं लगाना है, किस बाप से? ब्रह्मा बाप से बुद्धि योग नहीं लगाना है, दादा मेघराज से, इस बाप से बुद्धि योग लगाना है। माना जो भविष्य में पार्ट आने वाला है, इसलिए मुर्लियों ने फोटो निकालने के लिए भी मना कर दिया। क्या इसको याद करने के लिए भी मना कर दिया? ये तो बीच में दलाल है। कौन है ये दादा लेखराज? ब्रह्मा बीच में दलाल है, ये अपनी दलाली लेकर के गुम हो जाएगा। ये वर्षा देने के लिए बैठा बैठा नहीं रहेगा, इसलिए दादा फोटो आदि निकालने के लिए बरखिलाफ। इन्हें ब्रह्मा दादा लेखराज का फोटो निकालने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। वर्षा तुम उनसे लेते हो। क्या वर्षा तुम उनसे नहीं लेते हो? माना दादा लेखराज ब्रह्मा से नहीं लेते हो, किससे लेते हो? वर्षा तुम उन बाप से लेते हो जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है। फिर फोटो इनका क्यों निकालते हो? फिर फोटो इनका निकालने की दरकार दरकार नहीं, ये तो कॉमन बात हो जाती है। सेवा का तो फोटो निकल ना सके क्या?
है
नहीं, ये तो सिर्फ बाप बिंदी है, सिर्फ बाप बिंदी है, सिर्फ बाबा बिंदी है, सिर्फ बाप बिंदी है, सिर्फ बाबा बिंदी थोड़े ही है। सिर्फ बाबा का तो फोटो निकल ना सके, क्यों नहीं निकल सकता? क्या कहा? क्यों नहीं निकल सकता? तो बाबा बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को,
बाबा का पास नहीं है, संबंध पूरे एक साथ नहीं आ सकता है साकार और निराकार।
दूसरी बात, बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को और तो बाप बिंदु को कहा जाता है, तो सेवाना का तो फोटो निकल न सके, उनको तो कोई जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो श्रीमत पे चलेंगे। श्रीमत है, बाबा का फोटो नहीं निकालना। क्या करना है? चैतन्य कैमरे में भर के रखना है। वो मरा हुआ होता है उसका फोटो निकाला जाता है याद करने के लिए, अभी तो जीता जागता है उसे फोटो निकालने की बेकार बेकार नहीं। तो जो बच्चे होंगे वो तो डायरेक्शन घुमानेंगे, और जो बच्चे नहीं है वो तो पहचानते ही नहीं, तो फोटो कैसे निकालेंगे? जानते ही नहीं, वो तो आदत खाते हैं। कल जवाहरी था, आज फिर प्रजापति का ब्रह्म कैसे हो गया? क्या कल ये जवाहरी था, आज प्रजापति का ब्रह्म कैसे हो गया? मुझे ना ज्ञान है ही बस अटपटिया। एक मुरली बोला, ये ज्ञान बड़ा अटपटिया खटपटिया चटपटिया है। वो बोला भंडारी बाबा है, बाबा भारत का भंडारा भरने आते हैं। किसका भंडारा भरने आते? विदेशों का भंडारा नहीं भरने आते। किसका भरने आते हैं? भारत का भंडारा भरने आते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। सचिव के आदमी हीरे जैसा था, ज्ञान की चमक मारने वाला था, और अभी अभी कौड़ी मिसल है। जैसे कौड़ी में क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा होता है। ऐसी बुद्धि बन चुकी है किसकी? भारत की। भारत की बुद्धि ऐसी बन चुकी है कैसी? कौड़ी मिसल। कौड़ी में ही बुद्धि बनी रहती है, तो इसको क्या कहेंगे? कौड़ी मिसल बुद्धि में। और जिसकी बुद्धि में ज्ञान रतन भरे रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हीरे जैसी बुद्धि, हीरे जैसा पाठ भारी। तो इतना भंडारा कौन भरेगा? बोला भंडारी भर रहे हैं। कलयुग में भंडारा खाली हो जाता है और सतयुग में भंडारा भरपूर हो जाता है। इसलिए नामी से बोला भंडारी, बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। क्या कहा? बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। कैसे करते हैं? तो किया है नहीं, उसकी बात नहीं आई। बात यह है कि बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। तो पहली बात यह है कि ब्रह्मा फिर बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। तो पहले बुद्धि में स्थापन करेंगे या पहले स्क्रीन बना देंगे? पहले बुद्धि में स्थापन करते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि जो सो बाप है, वो आकर के हमारी बुद्धि में सुखधाम की स्थापना करता है। और जो साकार बाप है, जो बाप समान स्टेज को धारण करता है, वो फिर स्थूल सुखधाम बनाते हैं। तो सचिव में भरपूर तुम्हारा भंडारा हो जाता है। बाप सुखधाम स्थापन करते हुए सभी को सुखी बनाते हैं। क्या कहा? जो भी सचिव में होंगे वे सभी सुखी हो जाएंगे। ब्रह्मा को भी फॉलो करना है। क्या कहा? करना है, ब्रह्मा को भी फॉलो करना है। भविष्य के लिए बोला या वर्तमान के लिए या पास्ट के लिए? ब्रह्मा को भी फॉलो करना है। इसका मतलब वो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर ब्रह्मा के रूप में कोई न कोई माँ का चेला धारण कर सकता है। अच्छा, ओ इंसान की डायरेक्शन दिया है सहारनपुर में प्रदर्शनी 1 तारीख के बाद 365 से 10/5/65 तक हो रही है। मैंने 65 से ही जरपुत्रों की प्रदर्शनी शुरू हो गई थी। ये मम्मा का डायरेक्शन नहीं था, मम्मा जब थी तब तक ये प्रदर्शनी और ये मेले मिलाकर सम्मेलन वगैरह नहीं होते थे। ये प्रदर्शन का काम, ये एडवर्टाइजमेंट का काम तब नहीं होता था। जैसे मम्मा गई उसके बाद से ये सब धंधा तंटा शुरू हुआ। कोई शांति।